أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم یہ کتاب قلندر شعور جو مرشد کریم کی ایک تصنیف ہے، بظاہر تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت ہی بڑی کتاب ہے، کیونکہ یہ ہمیں قلندر شعور سے آراستہ کرنے کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے. اب یہ قلندر شعور کیا ہے وہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو اپنا سکیں. آج ہم صفحہ نمبر 20 سے آغاز کریں گے اس کے مطالعے کا، اور اس میں جو نکات ہیں جن باتوں پہ ہماری توجہ ذرا کم جاتی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. تو یہ ٹاپک ہے ظاہر اور باطن. ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس میں انہوں نے تخلیقی نظام کو، تخلیقی سانچوں کو، جنسی کشش کے قانون کو ذات کے مطالعے کے ذیل میں بیان کیا. یہ سارا ذات کا مطالعہ چل رہا ہے. اب یہ ظاہر اور باطن، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک تخلیقی لامتناہی سلسلہ ہے، تخلیقی اور لامتناہی، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو ہمیں اس تفکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی جب ہم سارے تخلیقی سلسلے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، اس بات کے تفکر کی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور دوسرا ہمارا باطن. ظاہر کو ہم مادہ کہتے ہیں اور باطن کو روح کہتے ہیں، یعنی مادہ اور روح. روح وہ انرجی ہے جو مادے کو چلا رہی ہے. یہ روح اور مادہ دونوں کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ یہ دونوں اصل میں ذات سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اس چیز کو بہت توجہ سے سمجھ لیں، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں 14 نمبر صفحے پہ، آپ نے دیکھا ذات کا مطالعہ ہو رہا ہے. یہ نقطہ آپ نے اگر سکپ کر لیا تو پھر آپ روح کو علیحدہ ڈھونڈتے پھریں گے تو اس سے بات واضح نہیں ہوگی کہ روح جو ہے وہ اصل میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ روح جو ہے یہ بھی دو رخوں پر قائم ہے. روح کا مظاہرہ، ایک تو روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہوتا ہے، اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود بذات خود روح ہے. یہ دیکھیں ہر چیز کے دو رخ ہیں. اس چیز کو مادہ اور روح کہا گیا. اب جب بھی آپ کوئی مادی چیز دیکھیں تو اس کا باطن جو ہے وہ اس کی روح ہے. ذرا اپنے زاویہ نگاہ کو ڈیولپ کریں اور اس طرح سے دیکھیں جیسے مرشد کریم دکھا رہے ہیں. کیا کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، دوسرا اس کا باطن ہوتا ہے. اب ظاہر کو ہم مادہ کہہ رہے ہیں، اس کے باطن کو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو روح کہا. اب روح کا مظاہرہ روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہو رہا ہے. یہ مادہ اصل میں روح کا بنایا ہوا لباس ہے، اور روح کا اپنا مظاہرہ جو ہے وہ بذات خود روح کی صورت میں. حضور قلندر باب اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں اس کی مثال قمیض اور جسم سے دی ہے. فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوشت اور پوست سے مرکب ہے. طبی نقطہ نظر سے ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ پٹھوں کی بناوٹ کو ایک جسم کی شکل و صورت دی گئی ہے. ہم اس کا نام جسم رکھتے ہیں اور اس کو اصل سمجھتے ہیں. یہ ہماری فکر میں جو غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ مادی جسم کو ہم اصل سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کی حفاظت کے لیے، یہ جو جسم ہے پھر آگے اس کی حفاظت کے لیے ایک چیز اختراع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، ایجاد کی گئی ہے، جس کا نام لباس ہے. अब ये लिबास सूती कपड़े का, ऊनी कपड़े का, ये किसी खाल वगैरह का हुआ करता है। इस लिबास का महले इस्तेमाल सिर्फ गोश्त पोस्त के जिस्म की हिफाजत है, ये है लिबास का असल किरदार। फिल हकीकत इस लिबास में अपनी कोई जिंदगी या अपनी कोई हरकत नहीं होती। जब ये लिबास जिस्म पर होता है तो जिस्म के साथ हरकत करता है, यानी वो जो असल जिस्म है उसकी हरकत जिस्म से मुंतकिल होकर इस मादी लिबास को मिली, लेकिन दर हकीकत वो जिस्म के अज़ा की हरकत है। जब हम हाथ उठाते हैं तो आस्तीन भी गोश्त पोस्त के हाथ के साथ हरकत करती है, और ये आस्तीन उस लिबास का हिस्सा है जो लिबास जिस्म की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस लिबास की तारीफ की जाए तो ये कहा जाएगा कि जब ये लिबास जिस्म पर होता है तो जिस्म की हरकत उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है, पर अगर इस लिबास को उतार कर चारपाई पर डाल दिया जाए या खूंटी पर लटका दिया जाए तो उसकी तमाम हरकतें साकत हो जाती। अब हम लिबास का अगर इस जिस्म के साथ मवाजना करें तो इसकी कितनी मिसालें हो सकती हैं, या सिर्फ एक मिसाल देकर सही मफहूम जहन नशीन हो सकता है। वो ये है कि आदमी मर गया, मरने के बाद उसके जिस्म को काट डालिए, टुकड़े कर दीजिए, कुछ कीजिए, जिस्म की अपनी तरफ से कोई मुदाफियत कोई हरकत अमल में नहीं आएगी। उस मुर्दा जिस्म को एक तरफ डाल दीजिए तो उसमें जिंदगी का कोई शायबा किसी लम्हे भी पैदा होने का इम्कान नहीं। उसको जिस तरह डाल दिया जाएगा पड़ा रहेगा। इसके मानी ये हुए कि मरने के बाद जिस्म की हैसियत सिर्फ लिबास की रह जाती है, असल इंसान उसमें मौजूद नहीं रहता। गौर करें यहां पे हजरत कलंदर बाब औलिया ने क्या लफ्ज़ रूह इस्तेमाल नहीं किया, क्या कहा? असल इंसान। असल इंसान जो दो चीजों से मुरक्कब है, यानी रूह और इस मादी जिस्म से। अब इनके दरमियान में और भी बहुत सी चीजें हैं, उसको छोड़ दें, इस वक्त तवज्जो दें कि असल इंसान, असल इंसान उसमें मौजूद नहीं रहता, वो इस लिबास को छोड़कर कहीं चला जाता है। अगर ये जिस्म असल इंसान होता तो किसी ना किसी नौयत से उसके अंदर जिंदगी का कोई ना कोई शायबा जरूर पाया जाता, लेकिन नौ इंसानी की मुकम्मल तारीख ऐसी एक भी मिसाल पेश नहीं कर सकती कि किसी मुर्दा जिस्म ने कभी हरकत की हो। इस सूरत में हम उस इंसान का तजस्सुस करने पर मजबूर हैं जो जिस्म के इस लिबास को छोड़कर कहीं रुखसत हो जाता है। अब देखे, उन्होंने बाशगाफ कहा, बार बार कहा कि असल इंसान, असल इंसान, और फिर फरमा रहे हैं कि इसी इंसान का नाम अंबिया कराम की जबान में रूह है, यानी अंबिया कराम ने असल इंसान को रूह के नाम से मुतारिफ कराया ताकि एक कॉन्सेप्ट दिया जा सके, और वही इंसान का असल जिस्म है। ये रूह असल इंसान का जिस्म है, तो असल इंसान इसका मतलब रूह से ऊपर हुआ या रूह से अलग हुआ, और वही इंसान का असल जिस्म है। इसको बहुत तवज्जो से नोट करें, ये बहुत सारे पेज जो आपके हमारी सोचों में फिक्र में ग्रह लगी हुई हैं वो इस एक जुमले से खुल जानी चाहिए कि असल इंसान हमारी जात है, और ये रूह जो है ये उस असल इंसान का लिबास। फिर वो तरह तरह के लिबास बुनते हुए मादी लिबास तक आता है। नीज यही जिस्म, यानी जो रूह का जिस्म है, उन तमाम सलाहियतों का मालिक है जिनके मजमुए को हम जिंदगी से ताबीर करते हैं। यानी जिंदगी, यानी सलाहियतें हैं, जिंदगी असल में वो सलाहियतें या सिफात हैं जो अल्लाह ने अता की हैं, और ये रूह का जिस्म जो है उसके अंदर ये तमाम सलाहियतें पाई जाती हैं और वो जात के कहने पे इस्तेमाल करता है। अब जिस्म और लिबास की इस खूबसूरत तशबीह और मिसाल से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि असल इंसान या असल जिंदगी लिबास नहीं है। सबसे पहले ये बुनियादी नुक्ता देखे ना, एक तो आपको पहले बताया कि ये मादी जिस्म, जब हम इस किताब का मुतालिया शुरू किया तो पहली बात यह बताई गई कि ये मादी जिस्म असल नहीं है। दूसरी बात यह बताई गई कि तमाम अकायद, जब हम तारुफ कराते हैं तो के मुसलमान हूं तो ईसाई तो हिंदू तो सिख तो पारसी तो यहूदी, ये सारे जो हैं ये रूह के नाम हैं, रूह का कोई अकीदा या कोई मजहब नहीं होता। रूह तो रोशनी है, ये जुमला आपने शुरू में पढ़ा। यानी दो गलतियां अगर हमने दुरुस्त कर ली, जिस्म को असल मानने से बाज आ गए और अपने अकायद को जरा रिविजिट करके इसको पॉलिश करके आप ऊपर उठे, तो आप देखेंगे कि ये सारे अकायद, ये जो हमारे रेफरेंसेस हैं, हमें इनसे वी हैव टू राइज अबव, ऊपर उठना है, तभी हमें कलंदर शऊर हासिल हो सकेगा। तो फरमाते हैं कि जिस्म और लिबास की इस खूबसूरत तशबीह और मिसाल से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि असल इंसान यानी ये या असल जिंदगी ये लिबास नहीं है। जब तक जिस्म के ऊपर लिबास है, लिबास की हैसियत बरकरार है, जब हम लिबास को उतार देते हैं या लिबास से अपनी दिलचस्पी खत्म कर देते हैं तो लिबास की कोई हैसियत नहीं रहती, लिबास बिखर जाता है, लिबास फना हो जाता है। अब यहां पे इस बात को आपने जहन नशीन करना है, जब भी सोते जागते उठते बैठते इस तरफ तवज्जो दें कि ये मादी जिस्म से रिलेटेड दिलचस्पियां क्या हमारा वक्त जाया नहीं कर रही, क्या हमें इन दिलचस्पियों से ऊपर उठकर, ये नहीं कि आप जिस्म का ख्याल ना करें, इसकी जरूरतें पूरी करना हम ही ने करनी है, अल्लाह ने वसाइल दिए उसके लिए और वो पूरी करता है। जब तक रूह चाहती है जिस्म को बरकरार रखती है और चलाती रहती है। अब अगली बात नोई इश्तराक के उन्वान से हम पढ़ने लगे, ये जाहिर और बातिन के हवाले से टॉपिक हो गया। अब नोई इश्तराक क्या चीज है, नौ किसे कहते हैं, इस बात को समझ लें कि कायनात एक प्रोग्राम है, उस कायनात में अनवा है, नोए हैं, जैसे शेर एक नौ है, चीता एक नौ है, कुत्ता एक नौ है, बिल्ली एक नौ है, कौवा एक नौ है, परिंदों में ये सारे बेशुमार परिंदे, कोयल एक नौ है, कबूतर एक नौ है, इसी तरह फिर हैवानात में, फिर इसी तरह आप देखें नबातात में, आम एक नौ है, अमरूद एक नौ है, सेब एक नौ है, ये अनवा जो हैं ये आगे डिवाइड हो जाती हैं अफराद में, हर नौ रिप्रेजेंट होती है अपने अफराद से। इन नौ इंसानी का एक फर्द होने के नाते हम सब नौ इंसानी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या नुमाइंदा हैं, और ये नौ ही का काम है। देखें अल्लाह ने नौए तश्कील की हैं, तखलीक की हैं, नौए तखलीक करना ये अल्लाह का काम है, आगे नौ के ही ड्यूटी लगा दी, नौ में ये सलाहियत रख दी कि वो खुद को रिप्रोड्यूस करे, प्रोपोगेट करे, यानी अपना इजाफा करे, अपने अफराद को में इजाफा करे। इसके लिए फिर ये तखलीकी निज़ाम यानी कि अब मुर्गी पैदा की तो मुर्गी के अंदर अंडा देने की सलाहियत और अंडे से चूजा निकलने का पूरा निजाम अल्लाह ने वजा करके मुर्गी के अंदर रख दिया। अब ये मुर्गी की नौ के अंदर एक सलाहियत है जो कि उसके फर्द में जाहिर हो रही है और आगे वो सारा निजाम चल रहा है। तो ये नौई इश्तराक है, यानी तमाम अनवा आपस में कुछ कदरें मुश्तरक रखती हैं। सबसे बड़ी कदर मुश्तरक क्या है कि सब एक ही मालिक की तखलीक हैं। जितनी भी नौए कायनात में जितनी भी अनवा हैं वो सब अल्लाह रब्बे करीम की तखलीक हैं, अल्लाह उनका मालिक और खालिक है। इस लिहाज से सारी अनवा आपस में बाहमी इश्तराक भी रखती हैं और एक बाहमी रिश्ते में भी बंधी हुई हैं। अब इस बात की वजाहत के लिए फरमा रहे हैं कि हमारी फितरत और जबिल्लत दो अलग अलग चीजें हैं। जबिल्लत में हमारा दूसरी नौ मसलन भेड़ बकरी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सांप कबूतर फाख्ता वगैरह के साथ जहनी इश्तराक है। गौर करें, जिस्मानी इश्तराक नहीं है, रूहानी इश्तराक नहीं है। कौन सा इश्तराक है? जहनी इश्तराक। फितरत में हम अपना एक मुकाम रखते हैं और ये मुकाम हमें एक हस्ती ने जो तमाम नो से मावरा है और जो तमाम अफराद कायनात पर फजीलत रखती है अता की है। ये अता एक फाजिल अकल या तफक्कुर है, यानी जो अफराद कायनात पर फजीलत रखती है और तमाम नो से मावरा है यानी ऊपर है, उसने अता की है। और अता क्या है? एक फाजिल अकल और तफक्कुर। कोई जी फहम इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हैवानात में अक्लो शऊर नहीं है। बाज मामलात में तो जानवर इंसानों से ज्यादा बाशऊर और बाअकल हैं। अब यहां पे जरा रुक के मैं थोड़ी सी दो चार बातों की वजाहत अर्ज करने की इजाजत चाहूंगा। देखिये, इसमें पहला तो लफ्ज फितरत और जबिल्लत को समझ लीजिए। फितरत का लोगवी मतलब है बनावट, अल्लाह ने किस चीज को कैसे बनाया। वो डिजाइन जिस पे अल्लाह ने बनाया वो हमारी फितरत है। और जबिल्लत उसने अल्ट्रेशन करके उसे माहौल से अडॉप्ट किया या अपनी जरूरतों और ख्वाहिशात के तहत जब हमने अल्ट्रेशन की तो उसका नाम जबिल्लत हो गया। मिसाल इसकी ये है कि हर इंसान बेलिबास पैदा होता है। जब पैदा होने के बाद मुआशरे ने शौरी इर्तका के मराहिल तय किए तो लिबास पहनाना शुरू कर दिया बच्चों को। नतीजा ये कि ये लिबास हमारी जबिल्लत का हिस्सा बन गया, हमारी जबिल्लत का हिस्सा बन गया। इसी तरह बहुत सी चीजें जो हमारी फितरत के लिए जरूरी हैं, उनको हमने मॉडिफाई कर दिया। मसलन अब इंसान को भूख लगती है, भूख लगना इश्तराक फितरत है, यानी हर नौ में तमाम अफराद को भूख लगती है। अब शेर गोश्त खाता है, बकरी घास खाती है, इंसान सब कुछ खाता है, ये उसकी जबिल्लत है। ये वाजे हो गई बात कि फितरत में हम अपना एक मुकाम रखते हैं क्योंकि फितरत में अल्लाह ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि हमें एक सुपीरियरिटी दी गई है। वो सुपीरियरिटी क्या है? वो है गौर व फिक्र करने की सलाहियत। अब गौर करें कि अक्ल व शऊर और चीज है, गौर व फिक्र करना और चीज है। जानवरों में अक्ल व शऊर कई इंसानों से कहीं कहीं इंसानों से कहीं ज्यादा है, अकल भी और शऊर भी। आगे सारी मिसालें आ रही हैं, इस जुमले को आप नोट कर लीजिए। इंसान की फजीलत अगर है तो वो उसके गौर व फिक्र करने की सलाहियत की वजह से है कि वो चीजों को डिजाइन कर सकता है, डिवाइस कर सकता है। जबकि दीगर जो अनवा हैं उनके अफराद में ये सलाहियत नहीं है। अब आगे देखें, फरमाते हैं कि जमीन पर ऐसे चौपाए भी मौजूद हैं जिनमें मुस्तकबिल बीनी की सलाहियत होती है, यानी चौपायों को पहले से आगाही हो जाती है कि क्या होने वाला है। यह है मुस्तकबिल बीनी, बिल्ली कुत्ते और कई दूसरे जानवरों को आने वाली मुसीबतों जलजलों का पहले से पता चल जाता है। 1906 में सान फ्रांसिस्को के तारीखी जलजले से कब्ल कुत्तों ने रो रो कर रोजो शब भौंकना और चीखना शुरू कर दिया और लोगों की रात की नींद और दिन का सुकून गारत हो गया था। मुर्गाबियां बुलंद दरख्तों की तरफ परवाज कर गईं और सुअरों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। गायें रस्सियां तोड़ तोड़ कर भागने लगी। अब ये सारी बात ताकत और हिस्सियात तक ये, यानी कि जानवरों की हिस्सियात का तस्करा शुरू हो गया और बताया ये जाना या साबित वो ये करना चाह रहे हैं कि जानवर इंसानों से ज्यादा बाशऊर और बाकल हैं बाज मामलात में। वो बाज मामलात क्या हैं? मसलन जमीन दोस्त चूहे। इसी तरह कदीम यूनानी शहर हिलियस में जेरे जमीन रहने वाले चूहे, वीजल और दीगर बेशुमार हैवानात जलजले से 5 रोज कबल शहर से फरार हो गए। चिली के शहर कौन की फिजा गौल दर गौल परवाज करते हुए अनजाने खौफ के शिकार परिंदों की चीखों से लरज उठी और उसके बाद ये शहर जलजले की नजर हो गया। अगला टॉपिक है ताकतवर हिस्सियातीसी की कंटिन्यूएशन में कि ज्यादातर जलजले अचानक नहीं आते। अब इस पैराग्राफ में जलजलों की पूरा मैकेनिज्म डिजाइन उसका डिजाइन जो है वो कैसे बनते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं पूरा बता दिया कि ज्यादातर जलजले अचानक नहीं आते। जमीन की जिरी सतह की चट्टानों का बाहमी टकराव इब्तदाई मराहल का नुक्ता अरूज होता है। इब्तदाई मराहल यहां से आगाज पाते हैं। मुस्तकिल बढ़ता हुआ अर्जियाती दबाव सतह जमीन के झुकाव और उभार में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा कर देते हैं। जलजले की लहरें जेरे जमीन चट्टानों में रूनुमा होने लगती हैं। जमीन के मकनातीसी मैदान में खफीफ सा रद्दोबदल होता है। जमीन की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें खफीफ सा हल्का सा रद्दोबदल होता है। इंसानी हिस्सी सलाहियत इंसान की हिस्सियात जो हैं इन तमाम इब्तदाई कैफियात को महसूस करने से कासिर है, लेकिन हैवानात इस कदर हिसास होते हैं कि जलजले से कबल चट्टानों की जेरे जमीन मामूली सी टूट फूट को महसूस कर लेते हैं। अब इंसान की समाती सलाहियत जिसे आप हेयरिंग पावर कहते हैं ये निस्बतन इंतहाई महदूद होती है। इंसान 1000 साइकिल या चक्कर फी सेकंड की आवाज की लहरों को महसूस कर सकता है, यानी 1000 से कम की लहरों को साइकल्स की हर्ट्ज कहते हैं इसको, उनकी लहरों को ये महसूस नहीं कर सकता। इसी तरह 20,000 चक्कर फी सेकंड या इससे ज्यादा चक्कर की आवाजें इंसान की आवाज की लहरों को इंसानी कान नहीं सुन सकते। इसके बरक्स कुत्ते बिल्लियां और लूमड़ियां 60,000 चक्कर फी साइकिल यानी साइकिल पर सेकंड की आवाजें सुन सकते हैं। चूहे चमगादड़ वेल और डॉल्फिन 1,00,000 चक्कर फी सेकंड की आवाजें सुन सकते हैं। गौर करें कि उनकी सलाहियतें इंसान से बजाहिर कितनी ज्यादा है, लेकिन याद रहे कि ये मादी सलाहियत, मादी जिस्म की सलाहियतों की बात हो रही है। अगर इंसान अपने बातिन के असल इंसान से वाकिफ होके उसकी सलाहियतों को एक्सप्लोर कर ले तो वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह मछलियां भी समुंदर में इंतहाई मध्यम इर्ताश को महसूस कर लेती। अब इंसान में देखने की हद यानी जो रेंज है उसके व्यूइंग की रेंज जो है, साइटिंग रेंज जो है, वो बहुत कम होती है। कितनी कम? शहद की मक्खी जो है ये मावराए बनफशी शुआएं यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को भी देख लेती। इंसान के मुकाबले में शाहीन की आंख किसी चीज को 8,008 गुना बड़ा दिखाती है। इसी तरह कुत्तों का हाल है, सुराग रसा कुत्ते। अब दुनिया भर में पुलिस मुजरिमों को तलाश करने और उन्हें पहचानने के लिए अरसे से कुत्तों को इस्तेमाल कर रही है। जहां इंसानी नाक में तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख हिस्सी खलियात यानी सेंसरी सेल्स होते हैं, कुत्तों की कुछ नस्लों में 200 मिलियन। अंदाजा कर लीजिए कि 5 मिलियन और 200 मिलियन में कितना फासला, कितना फर्क है। इसी मुनासबत से कुत्ते में सूंघने की हिस इंसान से कई मिलियन ज्यादा होती है। अब इसी तरह अक्लो फहम की एक और मिसाल देखें, अंडों की तकसीम। शुतुरमुर्ग में अक्लो फहम का अंदाजा इस अमल से लगाया जा सकता है कि वो अपने अंडों की 3 किस्में करता है, उन्हें 3 ग्रुपों में बांट देता है। कुछ को रेत में दबा देता है, चंद को धूप में छोड़ देता है, बकिया को सीने लगता है यानी उन्हें सीने से लगाकर उन्हें गर्माइश पहुंचाकर उनसे बच्चे निकालता है। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो धूप में रखे हुए अंडों से रकीक मादा निकालता है और बच्चों को पिलाता है। इस गिजा से बच्चों में नशोनुमा की रफ्तार तेज हो जाती है और जब बच्चे कदरे बड़े हो जाते हैं तो रेत में दबाए हुए अंडों को तोड़कर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देता है। अब रेत में दबने की वजह से और टूटने के बाद बराह रास्त धूप पड़ने से उन अंडों में कीड़े मकौड़े पैदा हो जाते हैं और ये कीड़े मकौड़े उन बच्चों की गिजा बन जाते हैं। जब बच्चों की नशोनुमा का सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर वो घास फूस को अपनी गिजा बना लेते हैं और यूं ये बच्चे सन्ने बलूगत में कदम रख देते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडों को इस तरह रखना क्या किसी अक्लो दानिशमंदी से कम है? बिल्कुल भी नहीं। यानी देखे कितनी प्लानिंग है उसकी, उसको पता है कि मुझे बच्चों को किस स्टेज पे क्या करना है, कहाँ से लाऊं गिजा। तो वो अपने ही अंडों को 3 तरह से तकसीम करके ये करता है। अब इसी तरह बिजली की दरियाफ्त से पहले हमारे सामने चिड़िया से भी छोटा परिंदा बी है। अब बिया का मकान एक पूरी साइंस है, ये पूरा नक्शा है, पूरी प्लानिंग है। तिनकों के इस गुंबद नुमा लटके हुए घर में कमरे भी होते हैं, सोने के लिए बिस्तर भी होते हैं और बच्चों के झूलने के लिए झूला भी होता है। ये नाकाबले तज़करा 2 इंच की चिड़िया इतनी अक्लो फहम रखती है कि वो अपने घर को रोशन रखने के लिए जुगनू को गिरफ्तार कर लेती है और जुगनू की चमक से उसके घर में रोशनी रहती है। यानी ये छोटा सा परिंदा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की दरियाफ्त से पहले भी बिजली की साइंस से वाकिफ था या उसके इस्तेमाल करता था और जुगनू को नस्ल बाद नस्ल बतौर कुमकुमे यानी बल्ब के इस्तेमाल करता था। ये बिया क्या करता है कि तिनकों से वो गुंबद नुमा लटका हुआ एक घर बनाता है, फिर उसके अंदर पहले गीली मट्टी लाके लगाता है, फिर जुगनू पकड़ के लाके उस गीली मट्टी में उसका सर फंसा देते हैं। उसकी दुम बाहर की तरफ रहती है तो उस छोटे से घोंसले के अंदर वो जुगनू की दुम जो है वो बल्ब का काम करती है, रोशनी का काम करती है। यहां तक काफी है? जी डॉक्टर साहब।
जी सर, ठीक है।
मेरा ख्याल है यहाँ तक काफी है, अगर कोई सवाल किसी के जेहन में पूछना चाहे तो जरूर। जी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना?
जी डॉक्टर साहब,
सर
ये जो सवाल वैसे है तो नहीं है, मैं जो बच्चों ने आज तंग किया हुआ है।
चलें, आप इस तंगी से निजात पाने का एहतमाम करें।
हाँ जी, हाँ जी।
चले ठीक है, फिर रहती है बात।
ठीक है सर, इंशाल्लाह।
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर।